9/1/1987 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ભાવનગરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 48.
સામે ન્યાય તો અન્યાય કે સામે જે વસ્તુ કે સ્વરૂપ ને અન્યાય નહીં એવા અન્યાય કોણ સા કરે કારણ જે સ્વરૂપ ને અન્યાય હે નહીં આ કોઈ ન્યાય કા પ્રયોજન નહીં હોતા प्रकार का न्याय के लिए भी बहुत से न्याय है न्याय को हटाने के लिए इसके सामने ऐसा तो ये प्रतिपक्ष ही है न्याय का समग्र रूप तो यही है कि अन्याय के सामने इसका स्टैंड है वो न्याय है ढीला पड़े हुए जो न्याय है करना उन्याय है ऐसा समग्र रूप तो ऐसा ही है लेकिन ये भी एक द्वंद है राग द्वेष सुख दुख भेद उपाधि ऐसा जैसे द्वंद है ममत्व अन्याय ममत्व ऐसा ये भी न्याय में एक द्वंद है और आत्मा निर्द्वंद है कोई द्वंद नहीं है न राग का न द्वेष का મમત પ્રકાર નહીં કે મમત પ્રકાર નહીં દુઃખ નહીં દુઃખ એ મસ્તી ને છે એ વાત કે ન્યાય કી ભી આકુલતા હમે કેવા ન્યાય નિકાલને કી આકુલતા હમે કેવા એ તો ન્યાય કે સામે કી વાત હૈ અન્યાય ભીતર ને નજર મેં નહીં આતા ખોટા અન્યાય ભીતર નહીં આયા આ શકતા કોઈ પ્રયોજન નહીં હતા બહુ સાલ પહેલે મુંબઈ મેં એ વાત ચલી ગઈ ખુટા મંગાલે ને
અજીત પ્રસાદ
મંચન મેં બેઠે થે ન્યાય કી બાત નિકાલી ઇસમે યે બાત આગે ચલ રહા થા અધ્યાત્મ કા ન્યાય કા બાત છે ન્યાય को शांत करने के लिए बोलना पड़ेगा। अयो अन्याय भी अन्याय के सामने है। ये चीज अध्यात्मिक को आध्यात्मिक बात को इससे भी परे है। जहाँ अन्याय ही नहीं है वहाँ अन्याय का क्या प्रयोजन है? ये बात तो नहीं समझती। ये तो बात बहुत सुप्रीम लेवल की है। दृष्टि का जो विषय में से जो पैनल निकलते हैं उसमें बात को लेवल ही बदल दिया है। बहुत सर लेवल बदल ये तो क्या है इसकी कोई जानकार नहीं है। विशेष लोग अभी किया है तो क्या क्या चीज रखी है इसमें क्या क्या चीज पड़ी है साहित्य जितना प्रकाशित हुआ है उससे भी समझने वाले बहुत इन्हें गिने लोग मिले। नामी विद्वान है वो भी मुख्य बंदर को उतना ही अच्छा है। अपने नाम विद्वान ये जान ये भी आकांक्षी मन प्रश्न त्रिकाली में प्रसन्न में ज्ञान कारण है के दृष्टि कारण उत्तर मुख्यतः तौर से तो दृष्टि ही कारण है फिर ज्ञान को भी कह रहे दोनों साथ में ही है। दृष्टि पसर जाती है तो ज्ञान भी हो जाता है या पसर जाता है। अच्छा त्रिकाली के त्रिकाली में प्रसर में ज्ञान कारण है कि दृष्टि कारण है तो ऐसा है कि अगर सभी गुणों का परिणाम उनके क्वालिटी दिखे अपने अपने क्वालिटी दिखे तो इस दृष्टि का क्वालिटी ऐसा है कि जो मूलभूत जिसको बोल सकते हैं क्योंकि वो आधार लेते हैं। ज्ञान को भी कारण कहीं कहते दक्षिण दक्षिण दृष्टि को भी कारण कहते हैं दोनों की अलग अलग अपेक्षा है। जब दृष्टि को कारण कहते हैं तो वहाँ आधार देने की बात है आधारत्व के कारण दृष्टि को कारण और ज्ञान को कारण कह रहे तो जानना होता है बाद ही सब कुछ हो सकता है इसके पहले कुछ नहीं हो सकता है। मैंने दृष्टि तो श्रद्धा है तो जिसको नहीं जाने उसकी श्रद्धा कैसे करें? कारण की बात एक है पहले पीछे की बात एक है दो अलग अलग बात है दो अलग अलग समझना चाहिए। पहले पीछे की बात मैंने तो समकाली ने फिर भी बिना ज्ञान श्रद्धा नहीं पर आधार से ले रहे तो दृष्टि जो आधार लेती है तब ही सब संयत होता है इससे पहले संयतता नहीं है। दृष्टि को आधार देने का हो जाता है तब एक सभी संयतता पाई जाती है इससे पहले संयतता नहीं है। तो कारण कहने में किस कारण की कौन सी अपेक्षा की बात चलती है इसी पर आधार है तो इस विषय को ठीक नहीं समझे ये बात विवाद में चले जाए। दृष्टि अनादि से उसका दृष्टि का स्वयं का ऐसा स्वभाव है कि चाहे वो उल्टी कार्य करे या पूरा पूरी ताकत से काम करते हैं। पूरी ताकत से जब ये उल्टी है तो अपने आप सीधी होने का कोई क्या इलाज है? ये दृष्टि को अपने आप उन्हीं पर सीधे होने का क्या इलाज है? ज्ञान में पहले एक पहचान होती है, तो पहले जो इनका फोर्स है टूट जाता है, मिथ्या तो इतना कमजोर हो जाता है, इतना रस कट हो इसका कट जाता है कि उनकी उम्र के बराबर हो जाती है, वहां तक ज्ञान काम करता है। और फिर जो है कि ये पहचान ही निर्णय हुआ भाव वासना हुआ और अपने स्वरूप के लक्ष्य इतना रस बढ़ा इतना रस बढ़ा इतना रस बढ़ा कि जिस रस के बढ़ने से मिथ्या तो मंद मंदतर मंदतम हो जाने लगा, कि उसी रस के एक स्टेज में सारे जो मिथ्यात्व की परिस्थिति पलट कर पलट छुट्टी हो गई। वैसे ज्ञान काम करता है,
दृष्टि जो उल्टी थी पलटने के पहले से वो उल्टी है पलटते ही था,
इसके सिवा दृष्टि कोई कारणांतर नहीं है न कोई प्रकारांतर है। दूसरे नफ को किसी प्रकार से हो सकता है लेकिन जब मोक्ष मार्ग का विचार करें कि मोक्ष मार्ग का मूल कारण कौन है तो कहते हैं मोक्ष मार्ग का मूल कारण क्यों कि जिस ढंग से उन्हें अपने स्वरूप का आधार लिया इस ढंग का आधार लेने का कार्य किसी भी गुण में नहीं है, एक भी गुण में नहीं है। ये अपने आप की एक विशिष्टता है। तो मोक्ष मार्ग क्या क्या मोक्ष का भी आधार है तत्व का भी आधार है। बात दो अलग अलग है तो उसको किसी को पूरी सोच करके किसी को समझते हुए फिर कोई शंका आशंका नहीं होगी, विषय को बराबर समझ लेना चाहिए कैसे काम होता है, मोक्ष मार्ग शुरू होने के पहले मोक्ष मार्ग कैसे शुरू होता है, बाद में कैसे काम होता है, पूरी की पूरी जो व्यवस्था है परिणाम तो समझने के बाद कोई फिर गड़बड़ी नहीं रहती है। आशा कहीं कैसी भी हो किसी ज्ञानी ने किसी भी शैली अपनाई हो कहीं भी ऐसा क्यों कहा ये नहीं होता है समाधान हो जाता है, जो अपने ज्ञान में समझ में आ गया हो सब समझ में आता है। वस्तु का स्वरूप ही ठीक तरह नहीं समझा तो फिर किसी शैली से कोई बात आ जाएगी हो जाएगी कहीं ना कहीं हो जाएगी। ये तो कुछ नहीं आज तो कोई शास्त्र इतने उपलब्ध भी नहीं, इतनी शैलियां हैं इतनी शैलियां अनंत अनंत भाव भेदे भरे भी निष्कर्ष नहीं वाणी इतनी शैली
है। दृष्टि और श्रद्धा में कोई फर्क तो नहीं एक ही बार दृष्टि और श्रद्धा तो एक ही बार और श्रद्धा गुण हुआ
श्रद्धा गुण दृष्टि श्रद्धा गुण है दृष्टि उसका परिणाम
मार्ग में
यह दृष्टि
का जो चलता है
ऐसा है तो इसके बल से आगे जाते हैं तो आगे बढ़ते हैं इससे पुरस्कार होता है
क्योंकि ये संपूर्ण शुद्ध हो गया
पूरी ताकत से काम करते हैं पूरी ताकत से उसका परिणाम निकलता है। और बेसिक बात तो यह है, भूल का काम तो यही करते हैं कि सारे वृक्ष में वृक्ष का ताकत कहाँ है, कितना भी झंझावात आएगा जिसका भूल सब गिरेगा, चारित्र शायद गिर सकता है, वस्तु मजबूत होना तो और आगे बढ़ जाएगा। चारित्र अट्ठासी घंटे दस सिर्फ अट्ठासी घंटे
दृष्टि अपेक्षा जैसे इस तरह से असर यह है कि बंद मोक्ष से रहित है, इसी समय में वो अनुभव भी ये करता है कि बंद मोक्ष से रहित है। मार्ग में मतलब उसको हर समय में बल मिलता है उसी भावना से,
दृष्टि से ही बल मिलता है। दृष्टि ना जोर थी आगर लगाए बस नाई का बात ली, दृष्टि ना चौथी आगर मोक्ष मार्ग के जीवन में दृष्टि न मिले आगर
बढ़ा। किसी श्री में पुरुषार्थ की मुख्यता लेकर के
है,
किसी श्री में पुरुषार्थ की मुख्यता से
पुरुषार्थ का कारण यही दृष्टि है,
ज्ञान
ज्ञान भी है
ज्ञान को कारण देते
हैं, लेकिन वो फिर भी दृष्टि का कारण पुरुषार्थ का कारण ज्ञान और दृष्टि दोनों लगे तो उसमें दृष्टि बना है।
जैसे दृष्टि सम्यक नहीं हुई और ज्ञान से सम्मुख हो गया उस समय तो दृष्टि तो विपरीत है,
वहाँ
पुरुषार्थ प्रश्न नया जन्म देता
है, वहाँ वहाँ तो बोला ना ये चर्चा तो भी वहाँ ज्ञान ज्ञान के कारण से दृष्टि
सुनने के
बाद उसका युग है, फिर आगे जो बढ़ने में सब बात आश्रय जितना आश्रय बड़ा आश्रय बढ़ता जाता है सब विकसित पड़ाव ही जाता है, तो वो प्रकाश में बात ऐसे लिया है कि जैसे जैसे संतान का पुट लगता है, पुट लगता है जब दवाई में पुट लगते हैं तो दवाई की शक्ति बढ़ जाती है, तो जैसे जैसे संतान का पुट लगता है अनंत गुण की शक्ति जाती है। तो जिसको वो तो एक प्रेम का अनुभव का विषय हो जाना चाहिए कि दृष्टि क्या भीतर में काम करते है, किस तरह काम करते है, किस तरह से काम करते, तो फिर उसमें शंका आशंका का सवाल कोई पैदा नहीं, दृष्टि को नहीं समझे तो गड़बड़ी हो जाए, दृष्टि को समझता है फिर उसको कोई गड़बड़ी होने का सवाल नहीं रहता है। ये बात जो विवाद में जाते हैं वो तो कहे कि दृष्टि को तो समझे, धारणा कर ली हो कैसी भी कि सरदान ऐसा सरदान ऐसा, तुम खुद तो दृष्टि को समझे, ज्ञान में तो सब सब गुणों का अनुभव आता है ना, उसमें दृष्टि को भी समझे क्या, तो फिर दृष्टि कैसे काम करती है क्या काम करती है वो भी सीखने की चीज नहीं है, और ज्ञान क्या 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 कहाँ कहाँ कैसा काम करता है वो भी इसकी सीखने की चीज नहीं रही, बस फिर इसमें विवाद क्या, वस्तु का स्वरूप जो है सो है तो बदलता नहीं, किस काल दान हो या ज्ञान हो इसका जो स्वरूप है वो तीनों काल में जो है सो है, परिभाषा या शैली किसी किसी ने किसी भी कैसी भी कहीं करी हो ऐसे क्या मतलब, वस्तु का स्वरूप बदलता है क्या, तो बदल नहीं सकता। प्रभाग अनुसार कोई कम क्षेत्र वाला ज्ञानी होता है और कोई बहुत तगड़ा क्षेत्र वाला ज्ञानी होता है, फिर भी ज्ञानी अपने अनुभव से अज्ञानी की बात सही है झूठी है वो कह सकता है, कह सकता है क्या कारण है इसका? सूक्ष्म तो इससे इनका कम है कि इसके अनुभव में जो चीज आई है उस चीज से वो वस्तु को स्वरूप को देख लेता है तो मिलान करता है, तो कहता है मिलान होता है कनेक्ट करता है। कोई भाषा कैसे भी करे लेकिन वस्तु का स्वरूप थोड़ा बदलता है, वस्तु का स्वरूप तो जैसा है वैसा ही, तीनों काल में जैसा है वैसा है। फिर वहां से पता चल जाता है बात तो ऐसी। तो ये बात विवाद में जब गई, विवाद में लाए दीपक भाई वगैरह, दीपक भाई रमेश भाई उनका को बदले तो पहले हमारे पास आप जिस अपेक्षा से न्याय जिसका आप प्रश्न करते हुए ऐसे ही है तो बात नहीं है, बहुत कहने वाले कभी यही अभिप्राय नहीं है। मैंने साफ दिखता है कहने वाले का अभिप्राय, मैंने आपको साफ दिखता है लेकिन आपको परिचय नहीं है, मुझे तो इस व्यक्ति का परिचय ही नहीं रहता। तो हमारे कुछ चर्चाएं भी चली है, उसको पहले नहीं मंत्र वो तो मिले ही नहीं थे, और उनको तो दृष्टि का एक पक्ष भी हो गया था। तो एक तो शैली का पक्ष हो गया, दृष्टि का पक्ष हो गया, और बात फिर वैसे ही मिल जाएगी फिर उनको छोड़ कैसे सके, कि कहवे तो नहीं सकते बात। गुरुदेव को बात रखी कैसा नहीं, तो ये निकाल के दिया वो छोटे से है। अच्छा तो तुम हमको दिखाते हो, नहीं सिखाते हो, इतना स्पष्टीकरण में नहीं जाए फिर। तो वो कहते हैं हमारे ज्ञान में श्रद्धा क्या चीज है, ज्ञान क्या चीज है, सब हमारे ज्ञान में प्रत्यक्ष होते हैं, हमको तो नहीं आ रहा है, और तुम यहां से हमको सिखाते हो, क्या बात है। आधार दिया स्पष्टीकरण के लिए 16-17-18 बिना ज्ञान श्रद्धा होता है, बिना जाने किसी का किसी भी शब्द का प्रदान करते के और खरगोश के सिंह के समान होता है, वो बात लिया है पंचाध्यायी का बहुत अच्छा लिया है। लब्ध उपयोग का विषय में वो बात चर्चित किया है कि कोई ये कहेंगे कि समय दृष्टि का उपयोग बाहर चला गया है तो उसको श्रद्धा नहीं रहता है, ज्ञान नहीं रहता है। तो उन्होंने इस बात का आर्ग्यूमेंट वहां दे दिया कि जिस बात का ज्ञान नहीं रहे उसी बात का श्रद्धा रहना का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जिसको जो चीज जानने में नहीं रह रहे उन्हीं को श्रद्धे वो बात क्या सवाल ही को जाने उसी की प्रतीत कर सकते हैं कि मैं ऐसा ही, और जिसको जाने उसी में स्थिर होने का सवाल पैदा होगा। जिसको जाने नहीं उसी में स्थिर कैसे रहे, जिसको जैसे अन्य लोग में ध्यान करते हैं समाधि लगाते हैं लेकिन चीज को तो जाने नहीं कि अंदर में कौन सी चीज कैसी है, उनको कैसे समाधि लगेगी, एकाग्रता होगी, ध्यान होगा कैसे। ध्यान तो वही समझते कि ध्यान एकाग्रता का नाम, लेकिन चीज को नहीं जाने ध्यान किसमें करेंगे, तो चीज को नहीं जाने प्रतीति किसकी करेंगे। तो उसको आर्गुमेंट दिया है कि उपयोग बाहर चला गया इसका मतलब ज्ञान पूरा का पूरा चला गया, तो बाहर इस तरह लागू किया है। यहाँ जवाब दिया तो मुख्य तौर से तो दृष्टि ही कारण है, तो वहां मोक्ष मार्ग की बात ले ली कि मोक्ष मार्ग क्या है। मोक्ष मार्ग में अगर त्रिकाली युग में बार बार पसरते हैं, बार बार पसरते हैं, ऐसा क्या कारण मुख्य तौर से दृष्टि ही कारण। और फिर ज्ञान को भी ज्ञान को भी कारण कहते हैं। कह रहे तो उसको ज्ञान का साथ नहीं है, वो बात नहीं है, ज्ञान का भी साथ है, दृष्ट दृष्ट को ज्ञान का साथ है, ज्ञान को दृष्टि का साथ है। दोनों का एक दूसरे के साथ होने से फिर उन्नति सामर्थ्य भी आती है, स्थिरत्व भी आता है। प्रश्न भी था ना कि दृष्टि तो जानती नहीं है, ज्ञान ही जानता है। उत्तर की इस अपेक्षा से ज्ञान को भी कारण कह रहे, क्योंकि ज्ञान तो रोज होता नहीं, तो इस अपेक्षा से ज्ञान को भी कारण कह रहे। लेकिन यथार्थ में तो ऐसे 11 अंग वाले को तो ज्ञान तो हो जाता है, दृष्टि नहीं होती। वो बात लिया मिथ्या तो कहा, मिथ्या ज्ञान में तो क्या है कि जानना हो जाता है और प्रतीति साथ में अपने को नहीं आती है, तो वो ज्ञान सम्यक नहीं होता, सम्यकता नहीं पाई जाती वहां ज्ञान को। उसके हिसाब से ज्ञान का मिथ्यात्व रह गया, वहां भी दृष्टि का प्राधान्य बताया। और दृष्टि जानती नहीं है, ज्ञान जानता है, तो जानने पूर्वक पता नहीं होता है, तो ज्ञान को स्वीकार नहीं। दृष्टि को भी कारण कहवे और ज्ञान को भी कारण कहवे, और दोनों को कारण कहने से वस्तु का निर्णय नहीं होता है, तो बात ये भी कारण, ये भी कारण, चलो आगे, ये बात नहीं है, वस्तु का निर्णय होता है, ये बात नहीं है। अनेकांत कोई ऐसा अनेकांत नहीं है कि वस्तु अनिश्चित रह जाती है। अनेकांतिक ज्ञान में वस्तु का स्वरूप का ठोस ज्ञान, ऐसा ज्ञान न संशयात्मक है और न कच्चा है, एक ठोस ज्ञान। अनेकांतिक ज्ञान की निशंकता से कोई बढ़कर कोई निशंकता हो ही नहीं सकती, बढ़कर कोई निशंकता। ऐसा है कि भाषा तो भाषा है, वस्तु का स्वरूप जो है तो है। भाषा बेचारी जो है पूरी सामर्थ्य नहीं रखती वस्तु के स्वरूप को पूरा पूरा डिस्क्राइब कर सके, तो शैलियां बनती हैं कई तरह की, फिर भी वस्तु का स्वरूप अवाच्य रह जाता है। कुछ ख्याल नहीं रखा उसने, उन्होंने दिन खुलासा कर दिया था कि देखिए आप लोग जो है कहीं अपेक्षा से कहीं बातें पूछते हैं, पता चल गया था किसी एक साथ में से मैंने वैसे कंटामेन करके मास्टर है, मास्टर बोलते हैं उसको, सिखाती है सबको, जो पिताजी भी स्कूल में मास्टर है जिसके भाई रति भाई मास्टर थे गुरुकुल में, मैंने बड़ी मदद। उसने एक शास्त्र में से प्रश्न निकाला, जनरली जवाब तो जो दे दिया वो अपने ढंग से दे दिया, उनको ध्यान गया। देखिए आप लोग कई शास्त्र पढ़े हैं, कई शास्त्र में से प्रश्न निकालते हैं, लेकिन मैं कोई इसी अपेक्षा को विचार करके नहीं जवाब देता। मेरे तो जो भीतर में चलता है उसे जवाब दे देता हूँ, आपको अपेक्षित जवाब नहीं मिल रहे तो मुझे क्षमा कर देना। अच्छा, क्योंकि इसका मतलब कोई ऐसा नहीं कर रहे कि आचार्य ने तो ऐसा जवाब देना, ऐसा जवाब दे दिया फिर आचार्य को मेरे तो जो चलती है किस तरह का सुख सुखी जवाब अब क्या है जाने अजाने का, उनको तो कुछ देखना ही नहीं था ना, किसी को सिखाना था ना, किसी को उपदेश देना था, ये तो चर्चा का प्रसंग चला तो उनकी मस्ती बाहर आते थे, नहीं चला तो भीतर में क्यों मस्ती करती। मजा की चीज थी, इसको रस लेना है तो उसको रस का नहीं जाएगा, जिसको देखता है सब ये प्रकार के सिरफोड़ी कर दी है उनको मजा नहीं आ रहा है, वो सिरफोड़ी में नहीं करते माथा नहीं करो रस लो, बस बेहतर है था रस लो और उसके ज्यादा कर लो खराब थी। पूछा कि दृष्टि तो जानते नहीं आपने, मुख्य तौर से दृष्टि को कारण कहा लेकिन दृष्टि नहीं जानती है, ज्ञान जानता है ज्ञान पूर्वक मिलान कर लिया, हाँ इस अपेक्षा को मिलान का कारण कर मिलान कर दे बोलिए पता तो है हाँ तो क्या करें मस्ते में है ना, वो अपने मस्ते में है तो फिर मैं होता फिर बिल्कुल ऐसा तो बहुत सी शुद्ध पर्याय की बातें आती हैं तो उनको मलाते हैं बराबर शुद्ध पर्याय को आनंद को फिर उसको उड़ाते हैं बातें करते हैं आनंद की वगैरह के ज्ञान जीते हैं प्रकार के साथ मलाते हैं मिलाते हैं वो विचार आया था दो दिन से पढ़ते हैं बड़ी दृष्टि प्रकार तो दृष्टि का विषय तो बहुत जोर से है ज्ञान का विषय भी करती है आप इसलिए बात है कि दृष्टि जो है अनुभव के काल में सलगती है, इसके पहले तो निधि बढ़ी है तो उसके पहले जो है जिस दृष्टि जिसका आश्रय लेती है अगर उसको पहचान नहीं होगी तो उसकी महिमा आए बिना उल्टी दृष्टि जो पूरी की पूरी जोर से उल्टा कार्य कर रही है अनंत का अनंत ताकत से पूरी ताकत से तो वो तो ऐसा ही काम चलता रहेगा अगर उसकी पहचान नहीं हुई निकाली थी तो दृष्टि का विषय निकाली उसकी पहचान ज्ञान बनी है तो उसका जोर जोर भी नहीं पड़ा रस्ती नहीं पड़ा ये तो संता जी का तो प्रश्न ही ना खड़ा होता है इसलिए जो समय सार का जो विषय है वो इसको बोलने वाला है कि आत्मा में अनंत गुण है अनंत शक्ति से सुनिर्भर है आप लोग फिर भी ज्ञान मात्र जहाद भाव ये रचना प्रश्न एक बात यह है कि आत्मा ज्ञान प्रभाव अनंत गुणों का अंत है क्या कहा आत्मा ज्ञान प्रधान તેની સાથે અંદર માં ભૂમિકા કરવી વસ્તુ સ્વરૂપ સમજીને હું તો જ્ઞાયક છું એવી લગ્ન લગાડે તો જ્ઞાયક ને સાથે જ્ઞાન પ્રધાન દ્રષ્ટિની વાત કરવા દે તો એટલા પડકાની વાત કરવા દે તો એટલા પડકા પર્યાચર દ્રષ્ટિ રાખી ચૈતન્ય પ્રગટ ન થાય. દ્રઢ દ્રષ્ટિ કરવાથી જ ચૈતન્ય પ્રગટે. દ્રઢમાં આની સામર્થ ધર્યું છે તે દ્રઢ દ્રષ્ટિ સંભાવ. વિવૃત્તિ માનીને સિદ્ધ સુધીનું કોઈ પણ પર્યાય શુદ્ધ દ્રષ્ટિનો વિષય નથી. સાધક દશા તો શુદ્ધ દ્રષ્ટિના વિષયભૂત મૂળ સ્વભાવમાં નથી. દ્રઢ દ્રષ્ટિ કરવાથી જ આગળ જવાય છે. શુદ્ધ પર્યાયની દ્રષ્ટિથી પણ આગળ શુદ્ધ પર્યાયની દ્રષ્ટિથી પણ આગળ જવાતું નથી. દ્રઢ દ્રષ્ટિમાં માત્ર શુદ્ધ અખંડ દ્રવ્ય સામાન્ય નો જ સ્વીકાર આવે છે. અપની અપના ભૂમિકા સ્વયંકા અપને અપના બંધી હૈકમાં કરતા સાક્ષીતા પુરાવા કા જોડી હૈકો મજબૂત કરતા તો અપને અપને સ્થાન મેં ઉડાતા ભી હૈ
સપોર્ટ ભી કરતા
એસી બાત નહીં. तो दृष्टि का जो स्वरूप है, दृष्टि का जो कार्य है, उसमें इस प्रकार का जो वैल्यू है किसी एक भी होना नहीं है. तो अपने एक स्पेसिफिक वैल्यू रखता है. इस पर यह सूत्र है मंथन बोलो इस पर यह सूत्र है. आप विलोक भगवान कुंकुंडाचार्य ने अत्यंत गंभीर रचना लगता है સૂત્ર સિદ્ધાંત રક્ષા સૂત્ર આપી દીધું. ભાઈ ટૂંકા સંદર્ભમાં ગંભીર અને મોટી વાત કરવી હોય ત્યારે એને સૂત્ર સિદ્ધાંત કહેવામાં આવે. દર્શન અર્થાત અહીંયા સિદ્ધાંત કેમ કે દર્શનનો અર્થ ક્યાંક દર્શન ઉપયોગ થાય છે એ વાત અહીંયા નથી કરી. દર્શન અર્થાત સિદ્ધાંત આત્માના અનંત સર્વ અનંત ગુણોમાં, એટલા છે સર્વ અનંત ગુણોમાં આ ગુણની વિશિષ્ટતા દર્શક આ સૂત્ર છે. આ સૂત્ર આ ગુણની એક વિશિષ્ટતા દર્શાવે છે. દંશન બોલો ધમો એમ કહીએ આ ગુણની વિશિષ્ટતા દર્શાવે છે. અનંત ગુણ છે તે અનંત ધર્મ છે. અનંત ધર્મને પ્રત્યેકનું પોતાનું અનંત સામર્થ્ય છે. પ્રત્યેકને અનંત સામર્થ્ય સહિત પોતપોતાની વિશિષ્ટતા છે. તો અહીંયા આવે એમ હોવા છતાં, આ પરિસ્થિતિ હોવા છતાં પવન એને બહુ દંશન મૂળો દંશનને અહીંયા ધર્મના મૂળ તરીકે સ્થાપ્યું છે. સર્વધર્મના મૂળ ધર્મ તરીકે સ્થાપ્યું છે. આ એક ગુણની વિશિષ્ટતા દર્શક સૂત્ર છે અને તેમાં ઘણી ગંભીરતા છે. વાસ્તવિકપણે દર્શન પ્રાપ્ત અનુભવી મહાત્મા તેનો યથાર્થ અનુભવ કરે છે. ખાસ પ્રાપ્ત દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત અનુભવી મહાત્મા તેનો યથાર્થ અનુભવ કરે છે. કારણ વચન અગોચર તેમાં ઘણું છે. આટલા બધા પ્રસાદ પીધા પછી એમ કહેવું પડે છે કે વચન અગોચર તેમાં ઘણું છે. વચન ગોચર થાય છે તેના કરતા વચન અગોચર તેમાં એ અનુભવનો વિષય થઈ જાય છે. જે દર્શન શક્તિથી મોક્ષ હવે એની કીધી બ્રીફ નોટ અહીંયા છે કે જે દર્શન શક્તિથી મોક્ષ માર્ગનો અંકુર ફૂટે છે એમાં દર્શન શક્તિ કારણ છે. અને મોક્ષ માર્ગનો અંકુર ફૂટતાની સાથે જ જે દર્શન શક્તિને કારણે સર્વ ગુણ સ્વયં સમ્યક થાય છે. જે એવા પ્રકારે મૂળ અંગરૂપ પરિણમતા, આખા દ્રવ્યનું મૂળ અંગરૂપ પરિણમતા, આખા વૃક્ષનું એક મૂળ છે, જે એવા પ્રકારે મૂળ અંગરૂપે પરિણમતા અથવા મૂળ અંગરૂપે વર્તતા મોક્ષ માર્ગનો અંકુર ફૂટી મોક્ષ માર્ગ વૃદ્ધિગત થઈ મોક્ષ માર્ગની સંપૂર્ણ શુદ્ધતા રૂપ મોક્ષ અનિવાર્યપણે થાય જ થાય. સ્પેસિફાય કરવી પ્રાપ્ત છે, થાય જ થાય છે. અને જેને લઈને સિદ્ધ ભગવંતો સિદ્ધ પર્યાયમાં અનંત કાળ ટકે છે આ વાત કરી છે. પોતાના જ્ઞાનની નિર્મળતા માટે ચાર સૂત્રની ચિઠ્ઠીમાં પોતે સિદ્ધ થયા નથી, સાધક દશામાં રહીને કે સિદ્ધાત્મા આવો સાદી અનંત કાળ પર્યંત સિદ્ધ દશામાં ટકે છે તેનું કારણ તેનું સંતાન છે. આ સમય વાત છે તેનું કારણ સમ્યક સંતાન છે. જેને લઈને સિદ્ધ ભગવાન તો સિદ્ધ પર્યાયમાં અનંત કાળ ટકે છે તે દંશન મૂળ ધર્મો કલ્યાણ મૂર્તિ સમ્યક પ્રકારે કલ્યાણ મૂર્તિ દર્શન વિશેષણ આવ્યું છે. પીછે વાળા સબ છે પીછે કલ્યાણ મૂર્તિ સમ્યક દર્શન અને અત્યંત ભક્તિ નમસ્કાર આનાદી અનંત સંસારમાં અનંત જીવો તારા આશ્રય વિના અનંત તારા પરમ અનુગ્રહથી સ્વરૂપમાં રુચિ થઈ પરમ વિતરાગ ભાવ સ્વભાવ પ્રત્યે પરમ નિશ્ચય એવો કૃતકૃત્વ.
કે જે સદા પોતાની પૂરેપૂરી અનંત શક્તિથી પરિણમે છે અને અન્ય સમસ્ત ગુણોની નિર્મળતા થવામાં વધવામાં થાય છે. આ એક જ ગુણ ધર્મ કઈ ક્ષેત્ર મેં મોટાઈ લેના માન લેના મન પર ઈચ્છા રખના મેરી માનતા કઈ માનતા નહીં મજાની ખુદ ધર્મ કા દ્રોસ્ત કારણ બતાયા હૈ પર ઉસકે ફલ સ્વરૂપ જો હૈ કાર્ય ઉસકો દુઃખ બતાયા. લોક સંગના જિસકો હૈ ઉસકા ફલ દુઃખ હી દુઃખ હૈ ચાહે કિતના અચ્છા દિખાવા હો ચિંતાએ હો સત્તા હો પ્રકાર કે અનુકૂળતા દિખાઈ દેતી હો એકાંત દુઃખ એ નિષ્કા નતીજા
હૈ. સાંસારિક વ્યવહાર મે તો યે દ્રષ્ટિ થોડી રહેતી
હૈ. ઇસકા હિત મેં પત્ર કા લેખન કિયા હૈ ના લૌકિક દ્રષ્ટિએ તમે અને અમે
વર્તશું
પરવર્તશું તો પછી અલૌકિક દ્રષ્ટિએ કોણ
પ્રવર્તશું વ્યવહાર જો હૈ ઉસમે નાટક કરો ખેલ કરના હૈ ખેલ કરને બિના ચલે હિ નહીં તો ક્યા જૈસે બંદર એક ગ્લાસ ભાર દેતા ગ્લાસ ભાર દેના ઓર ક્યા ઇસે જ્યાદા નહીં.
અપને સ્તર પર કામ કે આસાન લગતા હૈ કહે આસાન લગતી હૈ પરિણામ અંદર જમતા નહીં બહાર ક્યાં દોડતા મચ્છરે કો બાંધે નહીં તો
મચ્છરે
બહુ
જમાઈ થઈ પરિણતિ એસી જમાઈ થઈ તો ખૂંટે મેં બાંધ દેવે તો ફિરા કરતા હૈ વહાં કા વૈસે ધ્રુવ મેં પર્યાય કો બાંધ દેવે ધ્રુવ નહીં ફિરેગી ઘૂમેગી વહાં કે વહાં ઘૂમેગી બાદ નહીં જાયગી બદલના ફિરના પલટના ઉસકા સ્વભાવ હૈ લેકિન ધ્રુવ ખૂંટે મેં હી ફિરેગી ઓર સુખ મિલતા રહેગા.
ઇસકે ઇતના આસાન
ऐसा रस चलता है तब उसको सत्संग कहा जाता है। रस चलता हो उसको सत्संग कहते हैं। जहाँ रस का स्रोत चले, सत का रस का स्रोत चले, कहता है कि जगत की लीला को बैठे बैठे हम सब देखते हैं, बिना टिकट का पैसा खर्च किए नाटक को देखते हैं।
देव गुरु शास्त्र श्रवण विचार वांछन मनन उगार और एक समय की पूर्व उत्तर पर्याय वर्तमान को जो जो साधन बुद्ध कहने में आता है वो सब निश्चय से
जाओ। ऐसा नहीं माने तब तो त्रिकाली में आ सकते नहीं, और ऊपर ऊपर से बाधक रूप कहे और अंदर से साधन रूप मानते रहे फूल तो वहां वहां ही झुकाव रहा करेगा, त्रिकाली में आ सकेगा नहीं। फूल है
दर्शन मनोविज्ञान जो है एट इट्स बेस्ट है। मनोविज्ञान अपने टॉप फॉर्म में आता है, पीक फॉर्म में दर्शन में।
पहले तो ये बात नक्की कर लो कि सुनने से ज्ञान नहीं होता, सामान्य से ज्ञान होगा, फिर सुनने का विकल्प पूछो तो भी उसमें खेद होना चाहिए।
पहली बार सुना कि शक आवश्यक नहीं, एक आवश्यक है, मुझे तो बहुत आनंद। कितनी उपाधि से मुक्त हो गया। पहले तो कंसेप्ट में ये था ना कि ये छह काम तो रोज करना है,
मतलब इनकी जो स्टाइल थी उस स्टाइल की एक बात भी आई है कुछ हमारी आत्मा को पकड़े।
मार्गदर्शन मिलते रहते एकदम हल्के हो गए, आवश्यक एक ही है, उसके लिए इधर उधर नहीं आना, बैठे बैठे
एक ही आवश्यक है।
जो चाहते तो भी नहीं
चाहते
किसी ने ऊपर काम असाइन किया और फिर उसे जैसे कुछ करने की जरूरत नहीं हो गया।
उलझन खिले उसकी उलझन मिल गई। पहले बताया था घंटा से हल्का हो गया एकदम। तो पूछा ना कि आत्मा अंदर से जोर करता होगा प्रकट थवा माटे मीठ मिली गई कटा हुआ दूध गाढ़ा किया हुआ दूध में कोई सेवन पड़ता है तो दही जम जाता है।
भगवत की लीला को बैठे बैठे
अभिप्राय तो हो ही नहीं, हो ही नहीं, दूसरे का बहुमान करने का अभिप्राय हो ही नहीं। एक प्रिंसिपल हर जगह लगाते हैं, पहले सुनना क्या नहीं, ये तो होना अभिप्राय नहीं निकालना, फिर उसका निषेध आएगा, उसका बिना निषेध नहीं आ सकता। के प्रति जो मचक आती है वो भी नपुंसकता है, कितना कड़क लिया है। और अभिप्राय में मचक हो गए तो अनंत ही नपुंसकता है। निमित्त का सांसारिक विषयों की अपेक्षा से फर्क है, क्योंकि सांसारिक विषय तो अपने झुकाव करने को कहते हैं और देवादिक निमित्त तो अपनी ओर झुकाव का निषेध करके आत्मा की ओर झुक जाओ ऐसा कहते हैं, इसीलिए देवादिक निमित्तों में फर्क करने में आता है। लेकिन जो जीव अपनी ओर नहीं झुकता है, देवादिक की ओर ही झुके रहते हैं, उन्होंने तो ये सांसारिक विषयों की तरह ये भी विषय बना लिया, फर्क नहीं रहा। तो ये तुम वहां पहले इस दुकान में बैठता था, इस दुकान में बैठ गया, यहाँ तो ये कहता है कि तुम तेरी ओर जाओ,
अपनी दुकान खोलो,
अपनी दुकान खोलो। तो जिनेन्द्र की प्रतिमा मूर्त रूप से अमूर्त चैतन्य मूर्ति को बताता है, तो बोला बिल्कुल भीतर में आत्मा ऐसा ही है।
सुनने ज्ञान की सुनने दर्शन था,
दर्शन में मूर्ति पाने से ये जीव में समूह चारित्र प्रत्यक्ष है, वितराग दशा से संपूर्ण वितराग दशा जने वर्ते चरम शरीर जानिए छे। मिथ्या एटले असम्यक दर्शन, इसमें भी उपयोग में अपनापन और अपनी ध्रुव चीज में परपना आता है, उपयोग मेरी ओर आएगा ऐसा होना चाहिए।
सहज रूप से आएगा उपयोग,
उपयोग में अपनापन करके
उपयोग करने वाले
तो त्रिकाली में अहमपना होते ही चल जाता है।
के बिना अंत की बात में अंत नहीं पाया जाता।
आज देव जी ने बतलाया अनंत संकृति अधिक की बात इतने बताया नहीं गए किसी सब सलामत धर्म सलामत तो सब सलामत समझे न समझे